ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्यों प्यास पूर्णिमा मनाते हैं। बाबा गुरुदेव की आशीर्वाद देने पर हम क्यों करते हैं व्यास पूजन। तो आज जिनके नाम पर हम व्यास पूजा करते हैं, जो गुरुदेव स्वयं व्यासदेव के प्रतिनिधि हैं, वो व्यास कौन है, तो आज उस विषय में हम चर्चा करेंगे। हम जो प्रकट दिन पर श्रीमद भागवतम की संकलन श्रील व्यासदेव ने कलिजुग की अल्प बुद्धि संपन्न लोगों को देखकर की थी। सुत गोस्वामी इसके प्रारंभ में कहते हैं, जब द्वापर युग त्रेता युग को अतिक्रम करके प्रारंभ हुआ, द्वापर समनु प्राप्ति अर्थात सत्य युग की बात द्वापर आता है, द्वापर की बात त्रेता, त्रेता की बात है। परंतु ये जो 28वां द्वापर चल रहा है, सातवां मन्वंतर, ये एक बार ही ऐसे अतिक्रम करता है। क्यों ना, कृष्ण पहले आते हैं लीला करने के लिए और इसके बाद इस कृष्ण भक्ति को शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो व्यासदेव उस समय भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की लीलाओं को सुंदर रूप में रचना करके इस कलयुग के लोगों को ये भक्ति की महिमा का शिक्षा दे। तो इसलिए ये जो द्वापर है ये त्रेता की बात आता है। द्वापर समनु प्राप्ते तृतीय युग पर जये जातम परासर आद्य योगी वासव्यम कलया है। तो ये योगी है, महान योगी है, उन्होंने पराशर और सत्यव्रत की कथा से जन्म लिए थे। तो एक समय त्रेता युग की अंत है और द्वापर युग की प्रारंभ है, इसको कहते हैं युग संधि। इस संध्या समय में एक बार ऐसे घटना हुआ, पराशर महान विद्वान है, तो एक समय एक द्वीप जहां गंगा नदी की धारा बहती है, तो वहां एक द्वीप है, तो इसको अभी कौन सा जगह है, बद्रीनाथ की पहले जो हम जाते हैं भीमपुर, इसका पहले पड़ता है। तो वहां पराशर जी उस द्वीप में देखे अद्भुत दृश्य है। क्या है, एक मछुआरे की कन्या एक सुंदर रूप धारण किए और पराशर बहुत विद्वान है, परंतु इस रूप के प्रति वो आकर्षित हो गए और उनके मन में दैवी इच्छा से सत्यवती के साथ संगम करने की इच्छा हुई। परंतु ये संध्या समय अनुकूल नहीं है संभव करने के लिए, परंतु पराशर जी अपने योग शक्ति से अर्थात प्रकाश कुछ बोतली बना कर अपने योग शक्ति से पूरा अंधकार कर दिए और उस मछुआरे की कन्या सत्यवती के साथ संभव किए और किस प्रकार दिव्य दृष्टि के द्वारा और शारीरिक संबंध नहीं। तो तुरंत सत्यवती ने एक संतान को जन्म दिया। कहां पर जन्म दिए, दीप में, उस दीप में, इसलिए उनका नाम हुआ दैपायन। और जन्म के समय उनका शरीर कृष्ण वर्णनी था अर्थात सांवला था, इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्ण दैपायन। और उन्होंने जब एक बार तपस्या कर रहे थे, सूर्योदय के समय व्यासदेव ने सरस्वती जल को आचमन किए और मन को एकाग्र करके वो सरस्वती नदी के किनारे बैठ गए। जब एकांत मन में परमेश्वर भगवान को ध्यान किए तो तुरंत उन्होंने काल की प्रभाव देखे। क्या देखे? जुग धर्म व्यतिक्रम प्राप्तम भूमि जुगे जुगे। जैसे लोगों की भावना होनी चाहिए तो ये सब नष्ट हो रहा है काल के प्रभाव से। और फिर देखिए कि मनुष्य के अंदर स्मृति शक्ति लोप पा रहे हैं, घट रहे हैं। भौतिक आनंद भावना शक्ति रासन से तत्पुर, और लोगों के अंदर कोई धर्म की भावना नहीं है। उन्होंने चातुर्पुत्र आदि कर्म को, जो यज्ञ आदि विधि को लोग बंद कर दिए हैं। तो फिर सोचे कि इस समय क्या करना चाहिए, लोगों की पूरी दृष्टि नष्ट हो चुकी है और ये कलयुग अभी आने वाला है कुछ देर के बाद। इसलिए कृष्ण दैवायन ने इस वेद को देखिए कि लोगों के पास वेद पढ़ने के लिए सामर्थ्यता नहीं है, बुद्धि नहीं है। स्त्रियां शूद्र बीजबंधनम त्रयोनम श्रुति गोचर। देखिए कलयुग में प्राय सभी लोग शूद्र बन चुके हैं, इसके अंदर संस्कार नहीं है। और अनेक लोग सिर्फ धन कमाने के लिए वैश्य वृत्ति का उपयोग करते हैं, स्त्री शूद्र बीजबंधनम। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन उसके पास गुण भी नहीं है इसलिए बंध हो दीजा बंद। क्षत्रिय भी है लेकिन उसके पास गुण नहीं है इसलिए उन्होंने वेद को अलग अलग भाग किए, इसलिए उनका नाम पड़ा व्यास। तो व्यास के उपजन क्या है? समास। जो सारे ज्ञान का आधार था वो था कौन सी वेद? जजुर्वेद। को उन्होंने चार भाग में बांट लिया, रूप साम अथर्व। और फिर उन्होंने अपने अपने शिष्यों को इस वेद को अध्ययन कराए। शिष्य प्रशिष्य तत्शिष्य से ही वेदांत हैं सिखाना अवर। तो फिर उन्होंने देखिए कि और इस वेद को सरल करना चाहिए और लोगों को छोटे छोटे कथा के द्वारा कहानी के द्वारा उनको सिखाना चाहिए। इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। इति महाभारत आख्यानं कृपया मुनिनां कृतं कर्म श्रेयांसि बढ़मानं श्रेयं एवं भवेत् इह। कि सब लोग कर्म पर ही डिपेंड है, कर्म की कमाई को भोग करने की सबके अंदर इच्छा है। इसलिए व्यासदेव ने महाभारत पर इतिहास फिर पुराण की रचना की। इसलिए उनका नाम पड़ा कृष्णा दैवायन व्यास। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है इसको कहा जाता है व्यासदेव की आखिरी कमाई है। फिर उन्होंने बहुत तपस्या के द्वारा ये 18 प्राण में सर्वश्रेष्ठ प्राण श्रीमद् भागवत के ज्ञान को आत्मसात किए, क्योंकि यही ब्रह्म सूत्र का सार है। अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतम अर्थ विनिमयम गायत्री भाष्यम रूपम असो वेदार्थम परिवृद्धिता। इसमें जो बृहद छंद में है गायत्री, तो ये गायत्री मंत्र जो सर्वश्रेष्ठ ध्यान के मंत्र है इस श्रीमद् भागवत में संकलन किए, अर्थात सत्यम परम धीम। परम सत्य सत्य को ध्यान करने के लिए ये गायत्री मंत्र बहुत प्रभावशाली है। परंतु ये श्रीमद् भागवतम इस गायत्री मंत्र से जुड़ता है, अर्थात जो इस भागवतम ग्रंथ को श्रवण करता है तो तुरंत उनके अंदर भगवान को ध्यान करने की प्रज्ञा शक्ति प्राप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवतम की संकलन व्यासदेव ने कैसे किए तो ये आप श्रीमद् भागवत में सुन चुके हैं पहले स्तंभ में कि जब व्यासदेव सब पुराण महाभारत और वेद को अलग अलग भाग में बांट करके समस्त वैदिक शास्त्र को रचना कर चुके थे परंतु अपने मन में कोई संतोष के अनुभव नहीं हुआ, इसलिए सरस्वती नदी की तट पर उन्होंने फिर एक बार उन्होंने क्या किए तपस्या की और सोच रहे थे मेरी असंतोष अप्रसन्नता को कौन दूर कर सकता है और क्यों मैं अंदर से अप्रसन्न हूं। उसी समय भगवान की प्रेरणा से स्वयं उनकी मार्गदर्शक गुरु नारद जी प्रकट और व्यासदेव से कहे आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं परंतु क्या है ये आपको नहीं पता है कि भागवत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। जो भगवान की बड़े बड़े भक्त परमहंस हैं उनको बहुत प्रिय है और उतना नहीं वो ग्रंथ भगवान अच्युत जो सबकी हितेशी है जो अपने स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते उनका भी प्रिय है। भगवता धर्म न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानं त्वेवं यजत प्रिय। तो फिर उन्होंने उनके भागवत की उपदेश दिए और भागवत की जोड़ी बताई। इसलिए हम भागवत कथा को प्रस्तुत करने के पहले हम जब बैठते हैं कि कैसा समय किसकी स्मृति करते हैं क्या करते हैं पहले नारायण गणम नमस्कृत्यम नरं सैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। तो पहला जो व्यासासन में बैठ करके इस भागवतम कथा को बोलने के प्रयास करता है तो ये पहला मर्यादा को निभाना चाहिए। कौन सी मर्यादा? ना पहला है तपस्या की मर्यादा नारायण नमस्कृत्य। ये एक शब्द में ये कौन इसका मंगलाचरण लिखा है वास्तव ये नहीं कर सकते कि व्यासदेव ने लिखे, व्यासदेव कभी नहीं अपने नाम को उल्लेखित किया। तो मूलतः ये भागवत के संविधान के अनुसार तो भागवतम ग्रंथ की महिमा को प्रकट करने के लिए और भागवतम के महात्मा को प्रकट करने के लिए इसको मनीषी ने रचना की। व्यासदेव कभी अपने चरित्र के लिए नहीं लिखे। तो ये जो मंत्र है ये इसके द्वारा उच्चारित किया गया है ये सुतु संधि पर, लेकिन ये मनीषियों ने इसको रचना की है। तो पहला व्यासासन में बैठने के लिए जो व्यता है कि हम तपस्या करना चाहिए नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम। जिनके पास तपस्या नहीं है तो कथा व्यास नहीं हो सकता, कथा वाचक हो सकता है जो बोलना चाहते हैं उसको वाचक कर, लेकिन कथा व्यास नहीं हो सकता। तो कथा व्यास होने के लिए पहला है तपस्या की आवश्यकता, इसलिए नारायण ऋषि की कृपा चाहिए तपस्या के और वाणी को समर्पित करने के लिए पवित्र करने के लिए दैवी सरस्वती। ये सरस्वती जो है जड़ विद्या का अधिष्ठान नहीं है, वो नहीं ये देवी जो दिव्य ज्ञान को प्रकट कराती है हृदय में, तो उनकी भी कृपा चाहिए। और नरोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, परम पुरुष है, उनकी भी कृपा चाहिए। फिर जिन्होंने इस वैदिक साहित्य को रचना किए और स्वयं भगवान की बांग में अवतार है, और व्यास की कृपा चाहिए। जैसे हम लोग पहले इस आश्रम को प्रणाम करते हैं, व्यास आश्रम की प्रतिनिधि देवी सरस्वती व्यास तत्व, उसकी बात जय बुदले, जैसे हम कहते हैं वृंदावन नाथ की गोविंदा है, सबकी हम जय करते हैं। तो ये जो जय है, ये वास्तविक जीव की जो अज्ञानता उनको क्या किया है, परास्त कर दिया है। तो अज्ञानता को जीतने के लिए ये जय करके आ सकता है। व्यासदेव समस्त वैदिक साहित्यों को रचना करके देखे कि जीव को जय प्राप्त नहीं हुआ है, तो सबका भावना वही है, धर्म अर्थ और काम मुख्य प्रति पुष्टि और मुख्यता है। तो इसलिए उन्होंने इस भागवतम की रचना की। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहिता उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान, ये साक्षात भगवान है। किस रूप में प्रकट हुए, वाणी रूप में। कृष्ण स्वयं चल गए, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि सह पड़ो नष्ट जसाम पुराण अर्थम अधना। तो स्वयं भगवान इस अर्क के रूप में, सूर्य के रूप में, पुराण रूप में सूर्य के रूप में प्रकट हुए, यह श्रीमद् भागवतम। और उसमें भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों का वर्णन है, जिसको कहते हैं उत्तम श्लोक, जो अज्ञानता को पार करवा सकता है। और व्यासदेव ने देखे कि लोगों का रुचि इसमें है नहीं, क्योंकि वास्तविक उनकी अनर्थ है, भगवान के प्रति रुचि न होना ही अनर्थ है। और इस अनर्थ को दूर करने के लिए क्या उपाय है, अनर्थम उपशमं साक्षात्। जो प्रत्यक्ष रूप से ये अनर्थ को दूर कर सकता है, जो अमना जोगिदार को दूर कर सकता है, तो क्या है, अधोक्षजे भक्ति योग, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। परंतु ये लोगों को पता नहीं है, लोगों से अजानता है, इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इसको संहिता के रूप में रचना की। विद्वान चक्र सात्वत संहिता, ये सबको हित करने वाला है, संहिता सम्यक हित प्रदान करने वाला, और किसके हित, सात्वत अर्थात भगवान के भक्त। इनको सुनने मात्र से जस्या वेपु श्रूयमाणानं कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसां शोको भयावह, जिस अनर्थ के कारण लोगों के अंदर भय और मोह उत्पन्न होता है, श्री भागवत के श्रवण मात्र से ये शोक और मोह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और परम पुरुष के प्रति अनन्य प्रेम उत्पन्न होता है। तो इसलिए इस शुभ पूर्णिमा है, हम जिस दिन व्यास से प्रकट हुए, इन सभी गुरुओं की जो व्यास की प्रतिनिधि सत्य की पूजा होता है। लेकिन जिस दिन गुरुओं का प्रकट भी होता है, जिन्हें इस भक्ति जो को प्रचार करते हैं, तो उसी दिन भी व्यास पूर्णिमा होना चाहिए, मतलब व्यास पूजा होनी चाहिए। तो दो मत है, तो श्रील प्रभुपाद ने इसलिए जो जो आचार्यों की प्रकट दिन गुरु के प्रकट दिन को व्यास पूजा के रूप में स्वयं घोषित किए, और उसी प्रकार उन्होंने स्वयं अपने व्यास पूजा के आयोजन स्वयं प्रभुपाद ने किए, क्योंकि पाश्चात्य देश के लोगों को सिखाने के लिए। इसलिए हम लोग गुरुओं के जन्मदिन में प्रकट दिन में हम व्यास पूजा करते हैं, परंतु आज आदि व्यास कृष्ण द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के आज ही प्रकट दिन। तो इसलिए आज ग्रंथों का भी पूजा होता है, जितना वैदिक ग्रंथ है उसको रख करके पूजा किया जाता है, क्योंकि व्यासदेव की वो प्रतिनिधि ग्रंथ है। तो उसके साथ साथ हम चर्चा करते हैं उस नारायण नमस्कृति के बाद हम कौन सा स्वर उच्चारण करते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति निश्चिति। तो ये अभद्र पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रायतः थोड़ा बहुत रहता है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, तो प्रभुपाद कहते हैं नट भगवान सेवया भागवत सेवया। तो भागवत क्या है? भक्तों को भी भागवत करते हैं। एक भागवत है क्या है? भक्ति ग्रंथ। अन्य एक भागवत भक्ति रस पत्र। जो श्रीमद् भागवत में जो भक्ति है, जो उस भक्ति को प्राप्त किया है वो है भागवत। जिनके हृदय में ये प्रेम है, हाँ, ये भक्ति के रस है, वो भी भागवत है। और चैतन्य महाप्रभु आदेश दिए कि श्रीमद् भागवत के अध्ययन भक्त भगवतम से करना चाहिए। सिर्फ हम ग्रंथ के अध्ययन करते हैं और श्रवण करते हैं, परंतु भक्तों की सेवा नहीं करते हैं तो अनर्थ नहीं जाएगा। ये प्राय शब्द के ऊपर विद्राघवाचार्य के निकाल दिए हैं। भागवतम सेवया अर्थात सुनना भी चाहिए, शुश्रूषु श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया इत्रा पुण्य तीर्थ निसेवन। तो प्रत्यक्ष रूप से इस पुण्य तीर्थ, जो तीर्थ को तीर्थ करने वाले हैं, पवित्र करने वाले हैं, तो उनकी सेवा से भगवान की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होगा। महत् सेवया, फिर कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, अर्थात उसी प्रकार महत्पुरुष भागवत भक्तों की सेवा करके इस भागवत की श्रवण करना चाहिए। अगर हम सिर्फ भागवत श्रवण करते हैं और भक्तों की सेवा नहीं करते हैं तो प्रायतः थोड़ा थोड़ा इसमें अर्थ रहेगा। गिरिधरी लाल श्रीधर स्वामी की टीका पर टिप्पणी देते हैं और कहते हैं कि जब तक कोई रति स्तर तक नहीं पहुंचता है, रुचि की बात ये रति, तब तक ये अनर्थ रहेगा। विजय ध्वज आचार्य ये कहते हैं कि प्राय जो अनर्थ है वो हमारे प्रारब्ध के साथ रहता है, शरीर के साथ रहेगा। प्रारब्ध की कमाई क्या है? शरीर ये रहता है, परंतु कृष्ण के अनन्य प्रेम व प्रेमी भक्तों के संग लाभ करने से ये जो प्रारब्ध के जो अनर्थ है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुन करके जो गोपियों का अंदर थोड़ा बहुत कड़वस थी ये अभद्र, तो तुरंत नष्ट हो गए। जो वो विराज जम देना, तो उन्होंने रजम रजम आदि जो है तो थोड़ा बहुत अनर्थ रहता है। इसलिए साधक भक्त के विषय में क्या कहा जाए, रति प्राप्त भक्त के अंदर भी राग द्वेष रहता है प्राय थोड़ा थोड़ा, परंतु वो उतनी मात्रा में नहीं है बधा जितनी तरह। वास्पर्धा में इसलिए श्रीमद् भागवत को सुनते समय हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि भक्तों की कृपा और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, ताकि हमारे हृदय की आनंद पूरी तरह से नष्ट हो, नहीं तो सुंदर भक्ति हृदय में प्रकट नहीं होगा। इसलिए हम लोग समय समय पर ऐसे श्रीमद् भागवत में तो भगवान के साथ भक्तों के चरित्र का समावेश है। उनको व्यासदेव ने बहुत सुंदर ढंग से समानुकरण किए हैं, परंतु विशेष करके हम भक्तों का भी चरित्र सुनते हैं। भागवत में जैसे प्रहलाद के चरित्र हैं, द्रौपदी के चरित्र हैं, जगन्नाथ महाराज के चरित्र हैं, विश्वदेव के चरित्र हैं, कुंती महाराज के चरित्र हैं, इस महान भागवत भक्तों के चरित्र है जो भगवान के साथ सेवा कर। लेकिन ये जो भक्तों की जो प्राकृतिक अप्राकृतिक आदि भक्तों को विशेष अवसर मिलता है ऐसे सुंदर भक्तों की विषय में चर्चा करने के लिए। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी के आज तेरह भाव है जो भागवत भक्त है भगवान की अनन्य प्रियतम चैतन्य महाप्रभु की पार्षद है। तो उन्होंने बहुत सारी ग्रंथों को दिए हैं जिसको पढ़कर के हम उनकी महिमा का विशेष महत्व को हम अनुभव करते हैं। तो ये जो सनातन गोस्वामी कौन है उनके चरित्र के विषय में गौर वर्णन दीपिका में कहा गया है या रूप मंजरी प्रश्ना पुराश्रीकृति मंजरी स्वच्छाति नाम भेदेन लवंग मंजरी पुत्र। तो बुद्धिमान लोग उनकी चरित्र को ठीक तरह से समझ करके यही निर्णय करते हैं जो पहले रति मंजरी के रूप में ललिता सखी की सेविका हैं और उनका नाम भी लवंग मंजरी के हैं। दो नाम हैं रूप मंजरी प्रेष्टा और रूप मंजरी की अधीन में कार्य करते हैं मतलब ललिता सखी के पीछे कौन रहता है रूप मंजरी और उस मंजरी की असिस्टेंट के रूप में कौन ये लवंग मंजरी का रति मंजरी। और कहते सात्यम गौर भिन्न तनुहो सर्वराध्य सनातन उनकी शरीर की सुंदर शोभा कैसे है जैसे गौरांग महाप्रभु की शरीर है विघ्नम्बा सोना के समान ऐसा ही उनकी शरीर की सुंदरता है। तम एवं प्रभिषत कार्यमान निरंतर सनातन और कुछ कार्य संपन्न करने के लिए चतुर कुमार में जो सनातन है वो ही उनकी साथ मतलब उनकी अंश आवेश उनके साथ प्रकट हुआ। तो सनत सनंदन सनत कुमार और सनातन ये चार बड़े विद्वान हैं। तो जो सनातन ने जो चतुर कुमार में वो ही सनातन गोस्वामी के साथ प्रकट हुए हैं इसलिए नाम वेद की सार को निर्णय करने के लिए सरल रूप में समझाने के लिए इसलिए सनातन गोस्वामी ने जो हरिभक्ति विलास जो दिए हैं वैष्णव के लिए सो भक्ति करने की सब अलग अलग उपाय किस पद्धति है और भागवतम की मूल सार बृहत भागवतम के रूप में दिए हैं और भागवतम की श्लोकों की टीका जो वैष्णव दोषी भागवत में अलग अलग कमेंट्री है लेकिन दसम स्कंध में जो वैष्णव दोषी है तो सनातन गोस्वामी द्वारा रचित है। तो ये सनातन गोस्वामी 1488 हम जो अंग्रेजी घटना करते हैं तो हम भरतवज ब्राह्मण परिवार में और शकाब्द कौन सा है 1410 शकाब्द और संवत है 1544 1544। तो उन्होंने भरतवज सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। तो उनके दो भाई थे रूफ और अनुपम जिनका नाम था बलराम। तो बाल्यावस्था में इसकी कोई नहीं दिए किस उम्र में तो एक बार उन्होंने स्वप्न में देखे रात्रि के अंतिम प्रहर में एक छोटा से बालक आकर के उनको एक ग्रंथ दे रहा है भागवत ग्रंथ और कहे इस ग्रंथ को पढ़ो और यही तुम्हारा जीवन की पूर्णता प्रदान कर सकता है। तो फिर उनकी नींद खुल गई और खोलते नींद खोलते ही देखे वो बालक है
तो ये बहुत दुखी हुई।
तो ब्राह्मण परिवार की जो कार्य है प्रतिदिन जो विश्व का रिचुअल, तो दैनंदिन ये कार्य था स्नान करके भगवान की पूजा करके। तो जब पूजा किए तो उस समय साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट होकर के कहे, देखो ये जो श्रीमद् भागवतम है इसको तुम नित्य प्रतिदिन पाठ करो और मुझे ही सुना। और जब इस श्रीमद् भागवतम को उन्होंने प्राप्त किए और कृष्ण के आदेश के अनुसार उन्होंने नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत को अध्ययन किया, तो सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की स्तुति में सर्वमाला लिखें कि यही मेरा एकमात्र बंधु है। मद एक बंधु मत संगीन मत गुरु मत महान मत निस्तार मत भाग्य मद आनंद नमस्तुते असाधु साधुता गाइन अति नीचो चताकर हाहन मच्छ कदाचिन मैंने कहा कि यही मेरी एकमात्र संगी है, यही मेरी गुरु है, यही मेरी धन है और मेरी निस्तार करने वाला है श्रीमद् भागवतम और मेरी भाग्यों को प्रदान करने वाले सौभाग्य प्रदान करने वाले मुझे महा आनंद के समुद्र में डुबाने वाले श्रीमद् भागवतम है और असाधु को भी साधु बनाने वाले श्रीमद् भागवतम है। अति नीच पतित व्यक्ति को भी एक उच्च कृष्ण प्रेमी भक्त बनाने में श्रीमद् भागवतम समर्थ है। इसलिए ये भागवतम कब मेरे प्रति कृपा करेंगे, कब मेरे हृदय में इस भागवतम स्मरण होगा, इस प्रकार प्रार्थना करते अतः ये भागवतम समस्त वेद के सार है, समस्त लोगों को दृष्टि प्रदान करने वाले हैं, सर्व दृष्टि प्रदान तो इस रस को जो एक बार पान कर लेता है फिर अन्य में किसी विषय में उसकी रुचि नहीं होता। तो ये श्रीमद् भागवत के अध्ययन स्नातक उस समय पहले से करते थे, परंतु उस समय के अनुसार तो उनकी पूर्वज जो मुकुंद थे मुकुंद मलिक, क्योंकि इनका नाम पहले था क्या है मल्लिक परिवार रहते थे, इसमें ठाकर मल्लिक भी रहते थे बाद में सनातन के नाम का। तो उन्होंने उनकी जो दादा तो बंगाल नवाब के अधीन में कार्य करते थे, तो पूरा विवरण है भक्ति रत्नाकर में। तो अब कैसे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी अल्लाहुद्दीन हुसैन सागी अधीन में मंत्री के रूप में कार्य किए दोनों, तो इसका सारे विवरण है। तो सनातन गोस्वामी जब हुसैन सागी अधीन में ऐसे मंत्री पद में नियुक्त थे, तो एक बार रूप और सनातन गोस्वामी, इनका नाम था पहले संतोष और रूप गोस्वामी का नाम क्या था पहले अमन, तो ये जब हुसैन शाह के अधीन में नौकरी की तो हुसैन शाह को उनको दिखा दी मतलब नाम परिवर्तन कर दिए, उनका नाम रख दिए साकर मलिक और दबीर खास, तो मेरे बहुत खास दबीर खास और ये बहुत बुद्धिमान थे। ये तो शराब पीता था, मांस भक्षण करता था, परंतु तो सारे कार्य यही करते थे दो भाई। तो एक बार जब रूप गोस्वामी को यह संदेश प्राप्त हुआ कि अभी चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं और जगन्नाथपुरी से अभी वृंदावन की ओर जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे, तो उन्होंने दो सेवक को भेजे कि चैतन्य महाप्रभु यात्रा के विषय में विवरण प्रदान करने के लिए। और ये दो भाई विचार किए कि अभी हमको इस मुसलमान के हाथ से छूटना है और ज्यादा समय नौकरी नहीं करना है। जो भी भक्ति में थोड़ा लग जाते हैं कहते और नौकरी नहीं करेंगे, हम कोई प्राइवेट बिजनेस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, पता है ना। मतलब तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी सोचे नहीं और नहीं करेंगे, तो इसलिए उन्होंने घर में कुछ ब्राह्मण को बुला करके उन्होंने क्या किया, पूरा सज्जा विधि, तो हरिमती विलास में पूरा सज्जा का विधि का वर्णन है। पांच चीज करना चाहिए, तीन बार पूजा, ओम, जप, ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देना चाहिए। जब कोई पोती दशा से छूटना चाहते हैं इसको कहते हैं पूरा सज्जा। पूर्व का मतलब पहले चर्चा मतलब करना चाहिए। तो रूप सनातन तो उन्होंने पूरा चर्चा की। तो रूप गोस्वामी चलिए पूरा चर्चा करके गए, क्योंकि उनका इच्छा था मैं जाकर चैतन्य महाप्रभु को मिले। परंतु तो सनातन गोस्वामी क्या किए, 20-30 ब्राह्मण को लेकर के उन्होंने प्रतिदिन भागवत पढ़ना शुरू कर दिया। विचार तो नवाब हुसैन ने संदेश भेजा, पता लगा सनातन क्यों नहीं आ रहा है, उसके बिना मेरे राजकार्य कैसे चलेगा। तो सनातन ने पत्र भेज दिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी बहुत बुखार चल रहा है, सुनिए शरीर की अस्वस्थता के बारे में उन्होंने पत्र भेजे। तो नवाब ने तुरंत एक वैद्य को भेजे और वैद्य देखा उनका, अच्छा ठीक है शरीर अस्वस्थ है। तो स्वयं नवाब एक सेवक को लेकर के पहुंचे और तुरंत अंदर आके जहां सनातन गोस्वामी ब्राह्मण के साथ भागवत में चर्चा कर रहे, तो सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि राजा को तो सम्मान देना चाहिए, शिष्टाचार। तो नवाब ने कहा, अरे तुम यहां क्यों कर रहे हो, वैद्य ने बताया कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है फिर भी तुम राजकार्य नहीं करते हो, तुम्हारे बड़े भाई बंगाल में सारे जीव को मार रहा है, और मैं सोच रहा था कि तुम सारे कार्य मेरे लिए कर लोगे, अर्थात ये बहुत हिंसा करता था और इन बाप बंगाल में जाकर के सब पर आक्रमण करता था, वन्य पशु की तरह सब पर आक्रमण करता था। तो सनातन ने कहे, देखिए और मेरा मन राज्य का जन है नहीं। तो ये सुनकर के राजा को बहुत क्रोध हुआ, अरे तुम्हारे बिना मेरे सारे राज्य का जब बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराज माफ कर दीजिए, मैं आगे आपकी सेवा नहीं कर सकता, आपको जो करना है करो, आप तो राजा हैं सर्वशक्तिमान है, जो करना है करो। तो राजा ने तुरंत ये सोचा कि सनातन लग जाएगा, इसलिए उसको बंदी बना के, बंदी बना करके उनको जेल में डाल दिया। फिर इस नवाब ने ओडिशा आक्रमण करने के लिए, उत्तर प्रदेश आक्रमण करने के लिए सनातन से आग्रह किया, चलो मेरे साथ। पर सनातन उस समय नजरबंदी में थे। सनातन ने कहा, अरे उत्तर देश ये तो स्वयं भगवान जगन्नाथ के देश है, पुरुषोत्तम के देश है, आप जा रहे साक्षात भगवान के पर आक्रमण करने के लिए, क्षमा कीजिए मैं आपके साथ नहीं दे सकता। फिर नवाब गुस्सा हो गया, कुछ समय तो ठंडा हो गया था उनका दिमाग, कहते सोचा इसका मनोभावना परिवर्तन हो जाएगा, परंतु इस बार कहा इसको अच्छी से कई बना दो, अर्थात उनका हाथ पैर में सिकुड़ डाल दिया। और राजा दक्षिण की ओर जा रहा है, तो उस समय जो दो सेवक को भेजे थे रूप गोस्वामी, तो आकर के संदेश दिए कि अभी चैतन्य महाप्रभु नीलांचल से वृंदावन की ओर यात्रा कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी नौका में बहुत धन लेके आए, लेकिन राजा नहीं था, और ये सारे संपत्ति को उन्होंने बंटवारा किया, अथा वैष्णव ब्राह्मण को दे दिए, 25% अपने रिश्तेदार के लिए और 25% मुकदमा में केस लड़ने के लिए रखे। क्योंकि सोचे राजा ने केस करे तो अपने लिए 25% रखे। तो उसी समय जब वो संदेश उनको प्राप्त हुआ कि चैतन्य महाप्रभु अभी वृंदावन की ओर जा रहे हैं, ये दोनों भाई बल्लभ और रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए उन्होंने रामकले से उन्हें कहा है इलाहाबाद। तो जब वहां इलाहाबाद में पहुंचे हैं संगम में जहां गंगा और जमुना की मिलन स्थान, लेकिन महाप्रभु के साथ इतनी लोग हैं वहां विभोर होकर की कीर्तन करते हैं और सब लोग प्राय उन्माद में भरे हुए हैं। उनको ऐसे लगा कि गंगा और जमुना नदी भी ऐसे इलाहाबाद सदैया को उन्हें डुबा नहीं पाया। लेकिन वास्तव में ये महाप्रभु की जो पार्श्वत के द्वारा जो कीर्तन है आज प्रेम की बाढ़ से सबको डुबा रहे। ये दो भाई महाप्रभु के ऐसे कीर्तन को देख करके ऐसे भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं किए, एकांत में खड़े रहे। और चैतन्य महाप्रभु जब आए तो ये दोनों भाई बहुत स्तुति करते हुए मुंह में तिनका लेकर के चैतन्य महाप्रभु के चरण में गिर पड़े और वहीं पर रूप गोस्वामी पाद ने चैतन्य महाप्रभु की स्तुति से संतुष्ट किए। कौन सा है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषये नमः। तो महाप्रभु ने दोनों भाई को आलिंगन किए और अपने प्रेम बस दोनों भाइयों को अपने चरण में दे दिए, उनके मस्तक पर अपना चरण रख दिए महाप्रभु। और महाप्रभु ये दोनों भाइयों को आलिंगन करते हुए कहे, नामे भक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वच प्रिय तस्मै देयम् ततो ग्रायन् सच पूज्यम् जतां। कहते मेरे भक्त ऐसे बड़े बड़े वेदांती नहीं, वहां जो लोग भक्ति नहीं करते सिर्फ वेद अध्ययन करके वेद की व्याख्या करते हैं वो मेरा इतना प्रिय नहीं है। लेकिन कुत्ते खाने वाले सोवाचन सोपचन कुत्ते को पका करके खाने वाले वो मेरे प्रिय है यदि मेरे प्रेम भक्ति पर अपिचे तो सुदराचार भजते मरण्य साधु देव सब मंतव्य सम्यक देव से हो। महाप्रभु ऐसे रूप और बल्लभ को प्रशंसा करते हुए दोनों को आलिंगन किए और पूछे, सनातन कहाँ है, उनकी स्थिति क्या है? देखिए ये कभी ये दोनों भाई मिले नहीं है, परंतु भक्त का भाव से भगवान के उसी भाव में उनको सोचते हैं। भगवान कहते हैं, जो मन पश्यति सर्वत्र सर्वं समय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचरामं। भक्त जिसी प्रकार उनको चिंतन करता है उसी प्रकार भगवान भी भक्तों की चिंतन करते हैं। आप सोचिए सनातन रूप गोस्वामी कभी चैतन्य महाप्रभु से मिले नहीं, परंतु चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जैसे दोनों भाई विचार कर रहे थे और महाप्रभु भी उनको विचार करते मिलेंगे। रूप गोस्वामी कहे कि अभी तो वो नवाब ने उनको कैदी में डाल दिया, जेल में डाल दिया, तो आपकी कृपा के बिना वो छूट नहीं सकते। तो महाप्रभु कहे कि कृष्ण उन पर कृपा करें और सनातन अभी जेल से छूट गया है और कुछ दिन के अंदर मुझे भेंट करे। ये सुनकर के रूप गोस्वामी और पर और महाप्रभु उनको फिर वृंदावन दे दीजा। तो वहां मैंने प्रयाग में ज्ञान के उपदेश दिए और फिर वृंदावन उपदेश दिया। उसके बाद ये घटना है कि यहाँ अभी चैतन्य महाप्रभु क्या किए, इलाहाबाद से कहाँ चल गए बनारस और तपन मिश्र के घर में रहे और तपन मिश्र के घर से फिर चंद्रशेखर के घर में। तो उस समय रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जब आप अपने घर से निकले एक्सरे में, पहले उन्होंने पत्र लिखे, पत्र लिख करके भेज दिए, हाँ एक संदेश वाहक के द्वारा भेज दिए, और उस पत्र में लिखा हुआ था कि मैं कुछ धन किसके पास रख के आया हूँ, एक बंगाल की बड़ी बड़ी मतलब व्यवसाय करने वाले, तो आप उस 10,000 स्वर्ण मुद्रा को आप अपने जेल से छुटने के लिए उपयोग करें। और चैतन्य महाप्रभु अभी वृंदावन के लिए यात्रा शुरू कर दी, आप भी हमारे साथ आकर के मिले। तो सनातन गोस्वामी इस पत्र को प्राप्त करके बहुत खुश हुए और उन्हें उस वणिक से 10,000 स्वर्ण मुद्रा मंगाया। और जो जेल के अध्यक्ष था उससे इस 10,000 स्वर्ण मुद्रा तो पहले उन्होंने उस जेल के अध्यक्ष को कहे, भाई देखो अभी हवा दक्षिण भारत गए हैं और आप तो बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हैं, आप कुरान पढ़ते हैं, सब धर्म के बारे में आपको पता है, आप जानते हैं, अगर यदि कोई व्यक्ति कोई निरपराध व्यक्ति को जो बंदी में है उसको मुक्त कर देता है तो उसको भगवान ने जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर देते हैं। देखिए मूर्ख लोगों को प्रशंसा करने से ना ये लाभ होता है, वो सोचते हैं हम बहुत बड़ा विद्वान हैं, जैसे वसुदेव ने कंस की प्रशंसा की, जसस्कर भोजन जसस्कर, आप भोज वंश की जस है, श्रेय प्रदान करने वाले प्रशंसनीय व्यक्ति, तो कंस खुश हो गए। तो विद्वान व्यक्ति इस प्रकार लाभ उठाना चाहिए, बुद्धि के उपयोग करें, मूर्ख की वो उसको प्रशंसा कर रहे। तो ये सोचा कि हाँ मैं तो सचमुच एक धर्मज्ञ व्यक्ति हूं, परंतु सनातन गोस्वामी कहते हैं सुखा सुख का प्रशंसा नहीं, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं। तो 5,000 स्वर्ण मुद्रा रखती कहीं देखो, तो ये स्वर्ण मुद्रा रखो तुम्हारा 2 लाभ होगा, मुझे छोड़ देने से तुमको पुण्य मिलेगा और धन भी मिलेगा, 2 फायदा है तुम्हारा। लेकिन उन्होंने बहाना बनाया, इतने से काम नहीं चले, वो कहा कि नहीं महाराज देखिए आपको तो छोड़ने में मेरा कोई आपत्ति नहीं है, परंतु एक चीज है, राजा जब आ जाएगा ना मुझे नौकरी से छुट्टी कर देगा, मेरी परिस्थिति तो देखो मेरे घर वाले हैं सब क्या करेंगे उसके बाद। तो ये तो प्रकाश नहीं किया, परंतु सनातन गोस्वामी समाज के ऐसे ऐसे बहाना बनाता है, तो सनातन गोस्वामी ने फिर 2,000 स्वर्ण मुद्रा फिर जोड़ ली, अर्थात 7,000 रुपये, तो फिर खुश हो गया। तो उन्होंने कहा डरो मत, आज रात में मैं तुमको मुक्त कर देता हूं, और उन्होंने उस लोहे के चज्जे को काट दिया और नौका से उन्होंने पार करा दिया। और सनातन गोस्वामी ने उनको बुद्धि भी बताया कि तुम नवाब को डरना नहीं है, तुम बता देना कि सनातन शौच करने के लिए गया गंगा के किनारे और शौच करके जब स्नान करने के लिए जा रहा था वहां उन्होंने गंगा में कूद पड़ा और मैं बहुत ढूंढा मिला नहीं, और मुझे ऐसे लगता है ना उनके हाथ पैर में सिकुड़ी था इसलिए वो डूब गया और गंगा नदी में बह गया। सनातन गोस्वामी ने उसकी सब बात बता दी। देखिए भक्त कितने चालाक होते हैं, ये सोचे कि नहीं भाई ये झूठ क्यों, सनातन गोस्वामी ऐसे क्यों झूठ बोलते, ये झूठ झूठ नहीं है। यदि परम सत्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी उपाय अवलंबन किया जाए वो झूठ भी सच है। तो इसी प्रकार सनातन गोस्वामी को उन्होंने पार करा दिया, और सनातन गोस्वामी वो राजमार्ग में नहीं गए, उन्होंने जंगल के मार्ग में चलते चलते पहुंच गए हाजीपुर का पहले थे तो पहाड़ी था, तो वो पहाड़ी का रास्ता बहुत दुर्गम था, रात्रि हो गए, 2 रात चलते चलते हो गए, कुछ खाए नहीं है। वहां के जमींदार एक पंडित को रख करके वहां जो भी लोग वहां पार करता था ना वो रात में ठहरने के लिए उनको आवास देता था, और रात को वो ज्योतिष के द्वारा पता कर लेता था कितना धन है और उस स्थान को रोकता था। तो ये पंडित जी ज्योतिष ने बता दिए कि इनके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है, जमींदार ने कहा कोई बात नहीं, तो सनातन गोस्वामी पहले निवेदन किए थे कि देखो कि ये जो दुर्गम रास्ता है ना पहाड़ी पार करने के लिए बड़े असमर्थता है, आप कृपा करके मुझे रास्ता बता दीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। देखिए सनातन गोस्वामी सबको पढ़ाए हैं पुण्य पुण्य कहा करेंगे, क्योंकि धर्म की चेतना सबको देना चाहिए। तो उन्होंने जब ये पता लगा लिया उनके पास 8 स्वर्ण मुद्रा है, खुश हो गए और उनके साथ रहने की खाने की सब व्यवस्था की। तो एक नदी था, वो नदी में स्नान करके जब सनातन गोस्वामी आए तो उनके लिए भोजन की प्रबंध कर दी। लेकिन सनातन गौतम इतना बेटों थोड़ी है, ये राजमंत्री हो चुके हैं पहले से, सब कूटनीतियों को पता है, उनको लगा इनके साथ तो मेरा कोई मित्रता नहीं है, लेकिन वो मुझे इतना इज्जत क्यों करता है, इतना क्यों देखभाल करता है, इसका पीछे कुछ रहस्य है। उन्होंने अपने सेवक ईशान से पूछे, ईशान तुम्हारे पास कुछ ध्यान है क्या? उन्होंने कहा हाँ मेरे पास 7 स्वर्ण मुद्रा है। तो सनातन गोस्वामी कहे अरे मूर्ख, तुम ऐसे मृत्यु की लोटा लेकर गले में लटका कर तुम चल रहे हो मरने के लिए? तो 7 स्वर्ण मुद्रा उनसे ले गई और सनातन गोस्वामी उस जमींदार के पास हाथ जोड़कर निवेदन करके बैठे, आप ये 7 स्वर्ण मुद्राएं रखिए और मुझे ये पहाड़ी का रास्ता पार करा दीजिए, आपकी बहुत जमींदार कहना है मैं तो काल से पता लगा लिया था और आज रात को 8 स्वर्ण मुद्राएं हम रुकने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत पुण्यवान व्यक्ति हैं, मैं आपको मारकर के ये धन लेने वाला था, लेकिन मुझे ये हत्या के पाप से आप मुझे बचा दिए, इसलिए आप अपने धन ले, मुझे धन की प्रयोजन नहीं है, लेकिन मैं आपको काल रास्ता पार करा दूंगा। चिंता करना सनातन गोस्वामी कहते नहीं, अगर यदि आप इस धन नहीं लोगे तो फिर कोई मुझे मार करके मेरे प्राण भी लेगा धन भी लेगा, तो क्या लाभ हो? तो ये समझौता पर वो जमींदार ने फिर वो 7 स्वर्ण मुद्रा ले, लेकिन सनातन गोस्वामी को पता चला और एक स्वर्ण मुद्रा ईशान के पास है। ईशान से पूछे, ईशान तुम्हारे पास कुछ है? और हाँ, और इसको लेके घर चल जाए और मेरा लोटा दे। तो सनातन गोस्वामी उनसे अपने कमंडोले ले लिए और ईशान को लेके चला और फिर 4 उन्हें अपने सेवक दे करके सनातन गोस्वामी पार करा। तो फिर सनातन गोस्वामी चलते 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 हाजीपुर में पहुंचे जहां उनकी बहनाई श्रीकांत रहता था और उस रात उन्होंने एक बगीचा में बिताया और क्या है पुराना वस्त्र पहने हुए अंगूठा लेकर के चले, फटी हुई करता, दाढ़ी बढ़ गया है, जेल में रहते थे कोई सेविंग नहीं किए और ऐसे तो मुसलमान लोग तो सेविंग नहीं करते। तो श्रीकांत अपने सेवक के साथ रात में जाकर के बगीचा में मिले सनातन गोस्वामी से और दोनों साला बहनाई दोनों बात किए और सब दुख सुख बात करते थे। सनातन गोस्वामी सब बताए कि कैसे बंदी बने और कैसे बंदी से निकल गया। तो श्रीकांत ने 3 लाख स्वर्ण मुद्रा रखा था, ये राजा के साथ घोड़ा की व्यापार करता था। तो श्रीकांत बहुत धनवान था, श्रीकांत ने कहा सनातन गोस्वामी से देखिए भाई आप ऐसे कंगाल जैसे क्यों ऐसे घूम रहे हैं, थोड़ा सेविंग कर लो, अच्छा वस्त्र पहनो और 2 दिन कम से कम यहां ठहरो। सनातन गोस्वामी नहीं, मैं एक मुहूर्त भी यहां ठहरना नहीं चाहता, मुझे कृपा करके अब इस नदी पार करवा दो, आप जानते हैं मेरे क्या स्थिति। तो तुरंत श्रीकांत ने उनको गंगा नदी पार करवा दी और फिर सनातन गोस्वामी बनारस में पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु उस समय चंद्रशेखर के घर में थे। और जब ये सूचना प्राप्त हुआ सनातन गोस्वामी को कि चैतन्य महाप्रभु उधर ही है, तो अपने को बहुत बड़ा भाग्यवान समझे और चंद्रशेखर की दरवाजे पर बैठे। अब चैतन्य महाप्रभु पहले से जान गए और चंद्रशेखर को भेज दिए, चंद्रशेखर जाओ तुम्हारे दरवाजे पर कोई वैष्णव महाभागवतम वैष्णव बैठा हुआ है। चंद्रशेखर ने आकर नजर डाला, देखा कोई भी नहीं, तो ये तो एक फकीर बैठा है, दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। तो उन्हें वापस आ गया और महाप्रभु से कहा उधर तो कोई है नहीं, तो महाप्रभु कोई नहीं है, कोई तो बैठा होगा। कहते हाँ एक मुसलमान फकीर बैठा है। महाप्रभु कहे उसको अंदर ले गया। तो चंद्रशेखर ने जाकर कहा ए महात्मा साधु आप अंदर आओ। और जब वो अंदर आए तो चैतन्य महाप्रभु दो दौड़ते गाए सनातन वसन का आलिंगन करने के। देखिए भगवान की क्या भाव है भक्त भी करते, जो कि साधारण भक्त नहीं समझ पाएगी, चंद्रशेखर ने नहीं समझ पाई। तो सोचा कि एक फकीर के मुसलमान और चैतन्य महाप्रभु फिर वही शब्द करते हैं कि सनातन वसन को आलिंगन के नाम ही भक्त चतुर्वेदी मत भक्त स्वचन। और सनातन वसन के आलिंगन करते ही उनके सारे शरीर प्रेम भक्ति में रोमांच हो गए और दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके इतनी आनंद का अनुभव हुआ, उनके आंख से इतनी आंसुओं की नदी बहने लगा। ये देखकर के चंद्रशेखर आश्चर्य की सीमा नहीं रह गई, ये क्या हो रहा है, इस फकीर को ऐसे आलिंगन कर रहे हैं। उसके बाद सनातन वसन के प्रभु मैं तो नीच जाती हूं, नीच कर्म करने वाले हूं, आप मेरे प्रति ऐसे हैं कृपा की, मैं तो आता हूं, मेरे स्पर्श करने से पाप के भागीदार होते हैं, जैसे कृष्णदास कविराज करते हैं पुरुष बेटा बैठे मुनि से आता जगा जी माता ही बैठे मुनि से पापिश। इसी प्रकार सनातन प्रसाद की दैन्यता देखकर की चैतन्य महाप्रभु हृदय के घर के भाव ने कहे चाह तुम इस देश को परित्याग करो। और चंद्रशेखर को कहे नहीं, पहले तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, उन्होंने अपने शरीर को साफ किए, कितने दिन से स्नान नहीं किए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं पवित्र हो जाऊं। सनातन गोस्वामी में ये क्यों कर रहे प्रभु, मैं तो सबसे अधम हूं सबसे नीच हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, ये जो कर रहा हूं मेरी शुद्धता के लिए मैं कर रहा हूं और आपके पास भक्ति की इतनी शक्ति है आप पूरी जगत को निस्तार कर सकते हैं। ऐसा करते हुए चैतन्य महाप्रभु फिर पुनर्वार आलिंगन किए और सारे शरीर को उन्होंने अपने हाथ में निकले हाथ में सफाई की और चंद्रशेखर को कहे जहां उनको स्नान करवा के अच्छे वस्त्र। चंद्रशेखर उनको गंगा के तट पर लेके गए बनारस के, वहां स्नान किए और जब चंद्रशेखर ने अपने वस्त्र दिए सनातन को सर प्रणाम किए मैं तकलीफ हूं मुझे ऐसे अच्छा वस्त्र मत दीजिए, कोई पुराना फटी वस्त्र है तो दे दीजिए। तब ये बात सुनकर कि चैतन्य महाप्रभु जी ने संदेश दिए कि सनातन ने ये वस्त्र को स्वीकार नहीं किया, इनकी वैराग्य की बात सुनकर के चैतन्य महाप्रभु बहुत हर्षित हुए। फिर तपन मिश्र के घर में निमंत्रण का भोजन करने की तो सनातन वसन को साथ में लेके गए और चैतन्य महाप्रभु कहें कि सनातन को भी प्रसाद दो। तपन मिश्र ने कहा उनके लिए और थोड़े कुछ खाद्य बचा तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कहेंगे आप पहले प्रसाद सेवन लीजिए। चैतन्य महाप्रभु प्रसाद सेवन करने के बाद फिर जो विशिष्ट था उन्होंने सनातन वसन को दी तो सनातन वसन को विशिष्ट को प्राप्त किए। तो फिर तपन मिश्र ने कहा आप एक अच्छा वस्त्र पहनिए। तो सनातन वसन पहनने मुझे बड़े आपकी प्रसादी वस्त्र ले लीजिए पुराना वस्त्र। तो फिर तपन मिश्र ने उनको एक पुराना वस्त्र और उसको फाड़ करके सनातन गोस्वामी ने एक बहिर्वास एक अंतर्वास और एक बहुवी तीन बना। तो महाप्रभु बहुत खुश होते थे कि उनकी बहने के द्वारा दिया हुआ जो फूल कंबल था उसका मूल्य था 300 रुपया। चैतन्य महाप्रभु का हमेशा उस पर नजर था और सनातन गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु की अच्छा नहीं लगता है, मैं तो वैराग्य हूं भिक्षा करना मेरी वृत्ति है। जब महाराज ब्राह्मण ने उनको निमंत्रण दिए कि सनातन आप इतने महान हैं आप जितना दिन बनारस में है ना आप मेरे घर में भिक्षा वा भोजन स्वीकार करना पूरी भोजन दे दो। सनातन गोस्वामी कहे नहीं वैराग्य व्यक्ति को कभी एक घर में भोजन स्वीकार नहीं करना चाहिए, इसको तो आत्मगुरी वृत्ति अपनाना चाहिए।
ये समझ की चैतन्य महाप्रभु हम कर सकते हैं,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु बार बार रहते थे सनातन वसंत सभा से कि महाप्रभु पसंद है। उन्होंने उस दिन गंगा तट पर गए, एक बंगाली वैश्या एक बुद्धि बुद्धि का मतलब फटी हुई पत्थर को खो रहा था, तो सनातन गोस्वामी जाकर के कहे महात्मा जी इस कंबल को लेकर के आपका जो बुद्धि है कथा है मुझे दे दीजिए। वो कहा देखो आपको देखने में एक साधु पुरुष जैसे लग रहे हैं, लेकिन मेरे साथ क्यों उपवास कर रहे हैं? ये अच्छा नहीं है। सनातन गोस्वामी कह रहे हैं तो उपवास नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य बात कर रहा हूं, मुझे आपकी फटी हुई कथा चाहिए। तो फिर उस बंगाली वैष्णव से उस कंधा को लेकर आए, तब चैतन्य महाप्रभु बहुत हंस गौरांगेरा भक्त दत्त वैराग्य प्रधान जहां देखी प्रीत है गौरव भगवान। तो वास्तविक महाप्रभु की मिशन ही था वैराग्य विज्ञान जब भक्ति योगम शिक्षार्थम एकम पुरुषम पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर आदि राम वास्तव में राम कभी उत्पन्न होता है जब चैतन्य महाप्रभु के प्रति हमारा आकर्षण रह जाता है तभी हम वैराग्य सकते हैं, नहीं तो फल को वैराग्य प्रकट वैराग्य स्मशान वैराग्य में कोई लाभ नहीं होता। इसी प्रकार सनातन वसंत जो फिर जगत को निस्तार करने के लिए किसी प्रकार शक्ति की आवेश की, उन्होंने क्या किए उनको आलिंगन किए चैतन्य महाप्रभु। तब फिर सनातन गोस्वामी उनसे ये जिज्ञासा करते हैं कि आपकी के नाम और जाए क्या करते हैं, लोगों के बारे में तो सब मुझे पंडित बोलते हैं परंतु मैं नहीं जानता मेरी हितायत किसने है किसका। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शक्ति प्रदान करके उनको भक्ति ग्रंथ का संकलन कराए और सारे प्रश्नों को तो उसके बाद फिर बहुत सारी कथाएं कि सनातन के द्वारा कैसे दयनीयता ये शिक्षा दी है, हरिदास के द्वारा सहिष्णुता और रघुनाथ गोस्वामी के द्वारा वैराग्य। अब देखिए जगन्नाथ पुरी में जब थे तो सनातन गोस्वामी मिलने के लिए गए, उनके शरीर में कंठ रोग हो गया, कीड़ा निकल रहा था, परंतु उस कीड़ा को उठाकर अपने शरीर में डालते थे। और जगन्नाथ के भक्तों का 26 वर्ष होता है इसलिए उन्होंने डर कर उस रास्ता में नहीं जाते, इसलिए जगदानंद ने कहा कि तुम चल जाओ वृंदावन, तुमको तो महाप्रभु ने वही स्थान दिए पितृदत्त स्थान, तुम वही स्थान में रहो। परंतु सनातन वसंत जब प्रणाम करके निकल रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे इस शरीर को त्याग करके आप सोचते हो क्या मुक्ति प्राप्त करो क्या कृष्ण के प्रेम प्राप्त करो, यदि यही सब होता है सौ सौ बार शरीर त्याग करता पर महाप्रभु जाकर उस कंठ शरीर को भी आरंभ किए सनातन वसंत और ये शरीर रुपये बन गया और ये सनातन गोस्वामी का आराध्य कौन है मदन मोहन। और इस मदन मोहन की सेवा मैंने कृष्णदास ब्रह्मचर्य को दी मदन मोहन के संकेत में दो मिनट में कहूंगा कि जब वो मानुदरी करने के लिए जाते थे वृंदावन से कहा मथुरा गोवर्धन परिक्रमा के लिए तीन दिन और फिर वापस आ जाते थे, तो मथुरा में मानुदरी करते थे तो एक दिन देखे कि एक छोटे से बालक एक दूसरे बालक के साथ खेलता और उसको देखते ही उनका चित्त आकर्षित हो गया और ये दोनों बालक क्या कर रहे हैं एक दूसरे से गिल्ला भी खेल रहे हैं, आप जानते हैं ना लकड़ी हाँ गिल्ला भी बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते बता रहे हाँ गिल्ला देखिए। और जब वो बच्चा हार गया तो कृष्णा देव ने कंधे पर उठा तो कंधे पर उठा, लेकिन ये जब हार गया कृष्णा तो वो बच्चा बोला कि मुझे कंधे पर उठा तो कृष्णा कहे कि मैं तो थक गया हूं मुझे भूख लग रहा है मैं अभी जा रहा हूं, तो भाग गए। ये बच्चा गुस्सा होकर के पत्थर हाथ में उठाया और दौड़ा उसको मारने के लिए, तो पुजारी ने उसको रोक दिया कहां जा रहे हो, और वो बालक जाकर के मदन मोहन की जो विग्रह था उसमें घुस
तब उसके पास स्विच हो।
दूसरा दिन देखे हैं ये दो बालक, ये जो चौबे हैं परशुराम चौबे की पत्नी वो खिचड़ी पका रहे थे, और ये दो भाई क्या कर रहे हैं, गरम गरम खिचड़ी को पका करके उन्होंने एक पत्ता में डाल दिए और दामकुल करते करते वो उस भूख मार रही है ठंडा करने।
तो साथ ही उसने देखा लेकिन ये बालक हैं भगवान भूख को ऐसे दामकुल करते ही ऐसा ही भूख मार के खिला रहे हैं।
लेकिन दोनों बच्चे खा के फिर खेलने के लिए चले हैं और बाबा आकर के बोले माँ एक बात कहो ना, बाबा कहो ना एक बात क्या सौ बात कहो सब बात मैं सुन लेकिन देखो ये दो बच्चों से मुझे खिला रहे हैं ना तुम थोड़ा नहा धो के नहीं खिला तो कोई बात नहीं मैं काल नहा धो के नहीं खिला हूं। और सनातन वसन ऐसे कह करके आगे बात करी लेगी और अगले दिन देखें ये दो बच्चे खड़े हैं और ये चौबे जी नहा रहे हैं और ये दो भाई रो रहे हैं अरे हमको भूख लग रहा है भूख लग रहा है और आप ही हम मटका फोड़ दें लकड़ी उठा दी। तो सनातन कृष्ण ने देखकर के दुखी देखो कि मेरी वजह से आज इनकी ये भूख सका। सनातन गोस्वामी ये दोनों को भजन कराने के बाद चौबे जी की पत्नी से माता से माफी मांगी तुम जिसे चाहो इसे खिला ये तो कह दिए लेकिन कृष्ण समझ गए कि बाबा के पीछे नहीं छोड़ो। जब माता दर लेकर के आ गए उन्होंने पार्टी बना दे दी हम हटा लिया गए तो सनातन गोस्वामी बहुत वृद्ध हो चुके थे तो ये बालक बाबा के पीछे भी चाह कर हाथ तो करें बाबा मुझे भी नहीं चल। सनातन गोस्वामी ने कहा मैं आपकी साथ चलूं अरे मेरे पास कुछ रहने के लिए स्थान नहीं है खाने के लिए कुछ भी नहीं है देखो मैं माधु करके खिलूंगा। गोपाल जी बोले जो खिला दो वही खाऊंगा और जहां मुझे ठहरा दो तो वही रह जाऊ क्या करे। बाबा ने लेकर आया और बालक को कंधे पर उठा लिया। बालक ने देखा कि बाबा की शक्ति नहीं कहते बाबा मैं चलते चलूंगा मुझे छोड़ दे। लेकिन साथ में वैसा नहीं देखते थे कि छोटा बच्चा है नंगे पैर बाल में तब जा रहा है कंधे पर उठा ले वहां पहुंचाए तो जो कुछ पार्टी बना देते थे जानते पार्टी राजस्थान पर बनाते आटा को बोल करके आग में तपा देते उसको नमक भी नहीं था। तो एक बार मदन गोपाल को दे दी मदन गोपाल को बाबा थोड़ा तो नमक डालो मेरी गलत से नहीं उतरता है। तो सनातन गोस्वामी कह के देखो ऐसे आपको नहीं लाता तो क्या करो जब तुम कुछ ऐसे खाना है तो अपना व्यवस्था करो। अरे गोपाल जी भी अपना व्यवस्था कर लिए बाद में है ना कुछ छोड़े नहीं सनातन गोस्वामी। तो उसी प्रकार सनातन गोस्वामी पता को उनकी सेवा की हमारा संबंध निग्रह है और संबंध आचार्य सनातन गोस्वामी और चक्रेश्वर महादेव के पास जब रहते थे भजन करते थे गोवर्धन परिक्रमा करते उनको मच्छर बहुत डरता था रात को। तो एक दिन सोचे मेरा भजन ठीक से नहीं हो रहा मच्छर काटने की वजह से मेरा ध्यान नहीं लग तो सोचे कि आज मैं झोली झोपड़ा लेकर के चल जाऊं। लेकिन जब झोली झोपड़ा बांध दिए महादेव जी कहा सनातन कहां जा रहे हो कहते देखो मच्छर सता रहे हैं भजन करो बैठा जा सकते नहीं नहीं आप यहां मत छोड़ के जाओ आप रहने के कारण मुझे भी बहुत आनंद मिल रहा है आपकी भजन से मैं आज से ये सारे मच्छर को खिलाता हूं। तब शिव जी ने महादेव ने कहा चक्रेश्वर महादेव हे मच्छर एक भी मच्छर ही नहीं है। तो उसी दिन से चक्रेश्वर महादेव के पास मच्छर भी नहीं है आज थोड़े बहुत दिखाई पड़ता है लेकिन सनातन गोस्वामी जितना दिन तक रहे वहां तो मच्छर नहीं है। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी वहां के दुर्गावस्था में पहुंच गए ब्रजवासी के पास जाते थे उनकी सुख दुख हाल चाल सब पूछते थे कैसे है तुम्हारा बेटा बेटी कैसे है शादी को आगे नहीं आपस में जब ब्रजवासी झगड़ा लग जाते थे उनके समाधान भी करा देते और सबको बहुत अच्छा लगता था सनातन गोस्वामी के पास। तो सनातन गोस्वामी आज के दिन इसे अंतिम समय से छोड़े तो जब ब्रजवासियों को पता चला सब लोग दुखी हो क्योंकि ऐसे के बाबा था जो ब्रजवासियों की सुख दुख में हालचाल सब कुछ पूछते थे। इसलिए आज के दिन सारे ब्रजवासी आकर के क्या किए भगवान श्री गंगा के पास सब मंडल की, इसलिए इसका नाम पड़ा मुंडिया पूर्णिमा। श्री सनातन गोस्वामी तिरुभाव महामहत्सव की। तो उनकी तिरुभाव कब तक कब हुआ था? 1558। और उन्होंने कितना दिन तक रहे? 70 साल तक संसार में रहना किए और हमको बहुत कुछ दान दिए। आज ऐसे उनकी गुणगान करके हम अपने चरण में कुछ नहीं। श्री सनातन गोस्वामी तिरुभाव महामहत्सव की। श्री व्यास पूर्णिमा महामहत्सव की। श्री प्रभुपाद की जय।